अध्याय दो। डॉक्टर घोष का गुरुजी से परिचय। चूंकि मेरा बेटा अब 2 साल का हो चुका था और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, इसलिए मेरे पास काफ़ी फुर्सत के पल थे। एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रही थी कि अपने समय का बेहतर सदुपयोग कैसे करूं, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ध्यान में बैठने का निर्णय लिया। उस दिन ध्यान के दौरान जो कुछ हुआ, उस क्षण शायद मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं था, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैं धन्य हो गई। जब मैं ध्यान के लिए बैठी थी तो लगातार मन में एक ही विचार चल रहा था कि मुझे अपने बेटे के स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष से मिलना चाहिए। यह ऐसा था जैसे कोई मेरे मन में ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो। इससे पहले मैं केवल उनसे 2 बार ही मिली थी, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पढ़ता था। इसके अलावा मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती थी, और बिना किसी वजह से उनसे मिलने में मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। लेकिन जाने के एहसास ने इतना व्याकुल कर दिया कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। मैंने तुरंत स्कूल में फ़ोन किया और कहा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे अगले ही दिन मिलने का समय दे दिया और मैं वहाँ पहुँच गई। उनके कार्यालय में कुछ और बच्चों के माता पिता भी थे और उन्होंने मुझे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। चूँकि वह कुछ अन्य लोगों से बातचीत करने में व्यस्त थे और मैं मज़े से कुर्सी पर बैठ गई और अपनी बगल में बैठी महिला को देखकर थोड़ा मुस्कुराई। मुझे नहीं पता कि क्यों, पर वह भी वापस मुस्कुराई और बोली, क्या आप योगा करती हैं? मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं एक अलग तरह का योगा करती हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने क्रिया योग के बारे में सुना है या नहीं। जैसे ही मैंने जादुई शब्द क्रिया योग बोला, डॉक्टर घोष बात करते करते रुक गए, मेरी तरफ पलटे और पूछा, क्या आपने अभी क्रिया योग कहा? जी बिल्कुल, मैं उनकी अचानक उठी दिलचस्पी से हैरान होते हुए बोली। आप क्रिया योग के बारे में क्या जानते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा, जी मैं क्रिया योग का अभ्यास करती हूँ। उनके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य का भाव उठा और उन्होंने पूछा, क्या आपके कोई गुरु हैं? क्रिया योग तो केवल गुरु के द्वारा ही सीखा जाता है, आपको यह पता है ना? मैंने कहा, हाँ सर, मुझे पता है, मेरे एक गुरु हैं और उन्होंने स्वयं महाअवतार बाबा जी से क्रिया योग सीखा है। उन्होंने हिमालय में उन अमर बाबा जी के साथ समय भी बिताया है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? ज़रूर, लेकिन मुझे उनसे पूछना होगा। वह केवल गुरुवार को ही खाली रहते हैं और मैं महीने के हर दूसरे गुरुवार को उनसे मिलने जाती हूँ। जब मैं अगली बार उनसे मिलूँगी तो अवश्य पूछूँगी। ठीक है, उन्होंने कहा और आगे कहा, वैसे मैंने लगभग 33 साल पहले एक योगी की आत्मकथा पढ़ी थी और तब से एक गुरु की तलाश कर रहा हूँ। मुझे अभी तक कोई नहीं मिला है। मैं बस मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता था कि वह कितने गंभीर थे, और अगर मैंने उन्हें गुरुजी से मिलवा भी दिया तो क्या वे गुरुजी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेंगे? और तो और, क्या गुरुजी उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? कौन जाने क्या होगा। वहाँ कुछ और मुलाकाती थे और मैंने उनसे विदा ली। मैं यह सोचकर बहुत खुश थी कि मुझे कम से कम एक और व्यक्ति तो मिले जो क्रिया योग के बारे में जानते हैं। ऐसी किसी क्रिया योग में दिलचस्पी रखने वाले को ढूंढ पाना वाकई में दुर्लभ था। कुछ दिनों के बाद जब एक सुबह मैं अपने यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठी तो मेरे मन में एक बहुत ही अजीब विचार आया कि आज मुझे कार में नहीं जाना चाहिए। अब यह वास्तव में बहुत अजीब विचार था, क्योंकि मुझे ऑटो रिक्शा में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर से यह भावना इतनी प्रबल थी कि मैंने अपने दिल की बात सुनने का ही फैसला किया। अपनी कार की ओर बड़ी लालच भरी नज़रों से देखते हुए और अजीबोगरीब दिशा निर्देश देने के लिए अपने दिल को धिक्कारते हुए मैं रिक्शा पकड़ने के लिए मुख्य सड़क पर बढ़ी। एक 6-सीटर गाड़ी रुकी और ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। चूँकि 6 सीटों वाली गाड़ी बहुत कम दूरी तक ही जाती थी और फिर से ऑटो रिक्शा पकड़ना पड़ता था, मैं उसमें बैठने के लिए कोई ज़्यादा उत्सुक नहीं थी। लेकिन ड्राइवर ने फिर पूछा तो मैंने कहा, वैसे जाना तो मुझे यूनिवर्सिटी तक है, लेकिन आप आधे रास्ते तक ही जाएंगे, इसलिए आप रहने दीजिए। और देखो, उसने कहा कि वह सीधा विश्वविद्यालय ही जा रहा था और रिक्शा के किराए से 1/5 हिस्से में ही मुझे वो छोड़ देगा। यह महज एक संयोग तो नहीं हो सकता, कुछ उससे अधिक लग रहा था। मुझे महसूस हुआ मेरी कार ना ले जाने के इशारों में कुछ तो राज छिपा था। यह जल्द ही स्पष्ट भी हो गया जब मैंने डॉक्टर घोष को अपने कॉलेज में देखा। मैं घर वापस जाने के लिए निकलने ही वाली थी, वह वहाँ दाखिले के लिए आए हुए थे। उन्होंने मुझे कार में साथ चलने के लिए आग्रह किया और हाँ, कार में बातचीत का विषय निश्चित ही क्रियायोग था। मैंने एहसास किया कि वास्तव में उनकी क्रियायोग में गहरी रुचि थी और अगले ही दिन महीने का दूसरा गुरुवार होने के कारण मैं गुरुजी से मिलने गई और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। गुरुजी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर कहा, उन्हें ले आओ। जाहिर था कि इन सब इत्तफाक के पीछे ईश्वर का महान उद्देश्य छिपा था और जो अब स्पष्ट हो चुका था कि नियति ने डॉक्टर घोष को गुरुजी से मिलाने के लिए इन घटनाओं को पिरोया था। डॉक्टर घोष ने क्रियायोग को बहुत ही गंभीरता से अपनाया। उन्होंने न केवल खुद को अत्यंत विकसित किया बल्कि आने वाले वर्षों में क्रियायोग की गूढ़ शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाया। उन्होंने पूरे भारत से विभिन्न साधकों के लिए गुरुजी और उनकी शिक्षाओं को सुलभ बनाने के लिए पुणे और पुणे से बाहर कई बैठकें, कार्यक्रम और भ्रमण आयोजित करने में मार्गदर्शन भी किया। ऋषिकेश, जगन्नाथपुरी, दक्षिणेश्वर, बनारस, त्रिवण्णामलाई में रमण महर्षि आश्रम, दुबई जैसे बहुत से स्थानों में यात्राओं की बहुत मधुर यादें हैं। उनके नक्शे कदम पर चलने वाले अन्य साधक राजा श्रीनिवासन, प्रणव संघड़िया, मिताली देवनाथ, संगीता, जय कुमार आदि भी थे जिन्होंने गुरुजी के प्रयोजन का दूसरे देशों में प्रसार किया। डॉक्टर घोष का स्कूल अभी भी सर्वोत्तम पश्चिमी शिक्षाओं के साथ साथ क्रियायोग और वेदांत का प्रसार कर रहा है। अध्याय 3, सूक्ष्म शरीर का मेरा पहला अनुभव। जब मुझे प्राणायाम की दीक्षा मिली तो मैं जल्द से जल्द सब कुछ हासिल करने के लिए बहुत उत्साहित थी। अपने ध्यान में बैठने से पहले मुझे 10 मिनट के लिए एक विशिष्ट मंत्र का जाप करना होता था। यह प्राणायाम का ही हिस्सा था। मैंने कहीं पढ़ा था कि यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है। मैंने यह भी पढ़ा था कि इस मंत्र के 24 जप एक क्रिया श्वास के बराबर हैं। यह मेरे लिए बेहद अच्छी खबर थी। मैंने निर्णय लिया कि मैं इस मंत्र का जाप हर समय करूंगी और तुरंत शुरू भी कर दिया। मैं हर सांस के साथ इस मंत्र का जाप कर रही थी। शुरुआत में इसके लिए मुझे कुछ अभ्यास करना पड़ा, लेकिन कुछ घंटों बाद यह अपने आप से होना शुरू हो गया। अब मैं यह हर समय कर रही थी, परंतु कुछ दिनों के पश्चात अत्यधिक सिरदर्द के कारण मुझे इतना कठिन अभ्यास बंद करना पड़ा। उन्हीं दिनों मैं एक बार आधी रात में जग गई और मेरे साथ कुछ अनहोनी सी घटने लगी। मुझे लगा कि मेरा आकार निरंतर बढ़ता जा रहा था और फिर एक सेकंड के भीतर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि मैं कमरे की चार दीवारों के बीच दबती चली जा रही हूँ। मुझे मालूम था कि मेरी आंखें बंद थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सब कुछ देख पा रही थी। मैं आंखें खोलना चाहती थी, लेकिन खोल नहीं पा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी सांसें बाहर खींच ली हैं और मैं बहुत डर चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और मैं डर गई कि और क्या क्या हो सकता था। इसलिए मैंने बस प्रार्थना करना शुरू कर दिया कि यह सब रुक जाए, और यह सब तुरंत रुक भी गया और मैंने राहत भरी सांस ली। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो स्वयं को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैंने तुरंत घड़ी में समय देखा तो रात के करीब 2 बज रहे थे। उसके बाद मेरी बिल्कुल भी आंख नहीं लगी। जब घड़ी में सुबह के 5 बजे तो मैंने झट से गुरुजी को एक SMS भेजा कि यदि वह जाग रहे हैं तो मुझे कॉल करें। तुरंत ही उनका फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाते ही उन्हें अपने अनुभव के बारे में सब बताया और तब उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है और ऐसा होता है, यह सब सूक्ष्म शरीर का अनुभव था। कुछ दिनों के बाद मेरे शरीर में बहुत तेज़ कंपन हुआ और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है और मैं उड़ रही हूँ। मैं खुद को अपने भौतिक शरीर से अलग देख सकती थी। इस प्रकार के अनुभव कुछ दिनों तक बार बार होते रहे और फिर मुझे उनकी लत लग गई। निस्संदेह मैंने बहुत मुश्किलों से सीखा है कि जब भी आप किसी चीज़ के आदि हो जाते हैं और उन चीज़ों की अपेक्षा करना शुरू कर देते हो तो दुर्भाग्यपूर्ण यह सब अनुभव होने बंद हो जाते हैं। मानो आपको यह याद दिला रहे हों कि आप जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं वह आपको अपेक्षाओं और इच्छाओं से ऊपर ले जाएगा, फिर भले वह इच्छाएं संसारिक ना भी हों। कुछ महीनों तक मैं हर दिन सूक्ष्म शरीर के अनुभवों को दोबारा से अनुभव करने का इंतज़ार करती रही, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। फिर मैंने इस बारे में तवज्जो देना छोड़ दिया। अध्याय 4, मेरी दीक्षा होना। मुझे गुरुजी के पास जाते हुए 2 वर्ष से अधिक हो गए थे और मेरे जीवन के यह 2 वर्ष इतने मधुर थे मानो किसी ने दूध में शहद मिला दिया हो। वैसे तो सब कुछ पहले जैसा ही था, बाहरी तौर पर कोई बदलाव नहीं हुआ था, पर फिर भी एक अनदेखा सा बड़ा बदलाव हो चुका था। यह मेरे भीतर का बदलाव था और इसके कारण हर चीज़ बहुत खूबसूरत प्रतीत होती थी और इससे भी कहीं अधिक खूबसूरत समय मेरा इंतज़ार कर रहा था। एक दिन मुलाकात के दौरान मैंने गुरुजी के साथ अपना एक विशेष अनुभव साझा किया जो मुझे ध्यान के समय हुआ था, जिसे सुनते ही उन्होंने इतनी स्नेहपूर्वक मुस्कान दी जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें क्रिया दीक्षा दूंगा। सचमुच आप मुझे क्रिया दीक्षा देंगे? और एक ही साथ मेरे भीतर खुशी और चिंता के भाव उमड़ पड़े। कब गुरुजी? मैंने पूछा। मेरी अगली छुट्टी वाले दिन, उन्होंने कहा। ठीक है, मैंने उत्तर दिया। मैंने अगले गुरुवार को उन्हें फ़ोन किया कि क्या वे घर पर हैं। और क्या मैं उनसे मिलने आ सकती हूँ? उन्होंने बड़े प्यार से कहा, आ जाओ। मैं कॉलेज से कक्षा ख़त्म करते ही सीधे गुरुजी के घर चली गई। वह दोपहर का भोजन कर रहे थे और उन्होंने मुझे अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन फिर मैं भोजन करने के लिए बैठ गई। वह भोजन अब तक खाए गए सबसे स्वादिष्ट भोजनों में से एक था। बस साधारण चावल और दाल और ढेर सारे घी वाली सब्जी अति स्वादिष्ट थी। भोजन के बाद गुरुजी अपने बैठक कक्ष में दीवान पर लेट गए और मैं माताजी गुरुजी की पत्नी के साथ सोफे पर बैठ गई। मैं गुरुजी द्वारा सिखाए जाने वाले अगले चरण की प्रतीक्षा कर रही थी कि अचानक मुझे उनके खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी। उस समय तक मैं उनके साथ इतनी खुलकर बातें नहीं करती थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद उनके आराम करने वाले समय में बाधा डाल रही हूँ। मैंने माताजी से कहा कि मैं चलती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ी देर और बैठने के लिए कहा। कुछ मिनटों बाद गुरुजी जाग गए। मैंने पूछा, क्या अब आप मुझे अगला चरण सिखाएंगे? मैं उसी के लिए आई हूँ। मैं सिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं, वह एक विशेष दिन पर अलग से सिखाया जाता है। ओह ठीक है, मैंने कहा। क्या मैं उस समय निराश थी? मैंने अपनी निराशा छुपाते हुए उनसे जल्दी विदा ली। अगले गुरुवार को उन्होंने मुझसे कहा कि वह मेरे द्वारा किए जाने वाले व्यायाम और प्राणायाम का अभ्यास देखना चाहते हैं। मैं प्राणायाम का अभ्यास करते समय बहुत घबराई हुई थी, सचेत थी और वह मुझे बहुत ध्यान से जांच रहे थे। मेरे मन में हजारों विचार उठ रहे थे और मैं उनके प्रति बहुत सचेत थी। मैं हर पल यही सोच रही थी कि वह पक्का यही कहेंगे कि मुझे अभी और अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2 सालों के अभ्यास के पश्चात भी मेरा अपने विचारों पर कोई नियंत्रण नहीं था। जब मैंने प्राणायाम समाप्त किया तो उन्होंने मुझे कुछ गलतियां बताई जहां मैं ठीक से नहीं कर रही थी। मैं इस चरण को सीखने के लिए कम से कम 1 और वर्ष के अभ्यास करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, ताकि मैं फिर से दीक्षा प्राप्त कर सकूं। लेकिन उन्होंने घोषणा की, तुम दीक्षा के लिए तैयार हो क्या? मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा। यह अविश्वसनीय था। उन्होंने मुस्कुराते हुए फिर से दोहराया, तुम दीक्षा के लिए तैयार हो। मेरे लिए यह सच कुछ ज़्यादा ही अजीज था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बताया हो कि मैंने 1,000 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है और यह राशि मुझे जीवन भर हर दिन मिलेगी। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी। फिर उन्होंने मुझे बीच में ही रोक कर गले लगा लिया। यह पहली बार था कि उन्होंने मुझे गले लगाया था और सच में यह आज तक का सबसे अच्छा आलिंगन था। हालांकि अब जब भी मैं उनसे मिलती थी तो उन्हें गले ही लगाती थी, लेकिन वह वाला आलिंगन बहुत ही विशेष था और पूर्ण रूप से दिव्य अनुभूतियों से युक्त था। वह 18 सितंबर 2003 का दिन था और उस दिन ने मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगले 14 दिनों के अनुभवों ने पहले के सारे अनुभवों को धुंधला कर दिया। यदि मुझे उसी अनुभव का 1 और क्षण या 1,000 करोड़ या इस धरती की रानी बनने के बीच चयन करना हो, तब भी मैं उसी अनुभव का 1 और पल चुनने के लिए अपनी पलके तक नहीं झपकाऊंगी। वे 14 दिन इतने गहरे, रोमांचकारी, करामाती, मंत्रमुग्ध थे कि तमाम अतिशयोक्ति के बाद भी मैं उन दिनों की वास्तविकता वर्णन नहीं कर पाऊंगी कि उन दिनों में क्या हुआ था। उन 14 दिनों में मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, नींद भी नहीं आई और पूरे ब्रह्मांड से मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत अनुभव नहीं हुई। मैं पूर्ण थी, तृप्त थी और दिव्य प्रेम से ओतप्रोत थी। उन दिनों में अपना सब कुछ स्वेच्छा से किसी को भी दे सकती थी। मुझे किसी से कोई लगाव महसूस नहीं हो रहा था। अब कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखता था। बाबा जी ने सचमुच मुझ पर बड़ी कृपा की और सबसे बढ़कर उन्होंने मुझे एक ऐसा समझदार जीवन साथी दिया जिन्होंने पूरे दिल से मेरा साथ निभाया। भले ही वे इस रास्ते पर नहीं थे और उनका ऐसा कोई इरादा भी नहीं था, फिर भी वे हरदम मेरे साथ खड़े रहे। उस समय नक्षत केवल 4 साल का था और उसे मेरी पूरी तवज्जो की ज़रूरत थी, लेकिन अगर मुझे कभी अकेले रहना होता था तो उन्होंने मुझे वह भी करने दिया। उन्होंने मुझे वह सब करने दिया जो मैं करना चाहती थी और खुद नक्षत की देखभाल की। दीक्षा से पिछले दिन मैं अति उत्सुक थी और मैं हर समय यही सोच रही थी कि जब गुरुजी मुझे दीक्षा देंगे तो क्या क्या घटित होगा। मैंने रेणु से इस विषय पर लंबी बातचीत की कि क्या क्या हो सकता है। योगी की आत्मकथा में मैंने लाड़ी महाशय और उनकी पत्नी के दीक्षा अनुभव के बारे में पढ़ा था और मैं सोच रही थी कि क्या मुझे भी कोई उत्कृष्ट अनुभव होगा और मैं समाधि में चली जाऊंगी। रेणु और मैं काफ़ी उत्साहित थे और मैंने उससे कहा था कि दीक्षा के बाद जैसे ही मुझे होश आएगा मैं उससे अपना अनुभव साझा करूंगी। वैसे भी रेणु ने मेरी दीक्षा के पश्चात गुरुजी को अपने घर नाश्ते के लिए आमंत्रित किया हुआ था और उसने मुझे यह सोचकर आमंत्रित नहीं किया था कि शायद मैं उनके साथ शामिल होने के लिए सामान्य हालत में नहीं रहूंगी। 2 अक्टूबर 2003 की सुबह के सूर्य ने उदय होने में काफ़ी समय लगाया। मैंने काफ़ी देर तक स्नान किया और पूर्ण रूप से नारंगी रंग के कपड़े पहने। गुरुजी ने मुझसे कहा था कि वह मुझे दीक्षा देने के लिए सुबह आएंगे, लेकिन अब मुझसे और इंतज़ार हो ही नहीं पा रहा था। मैं इतनी बेकरार थी कि मैंने उन्हें कई बार फ़ोन किया। आखिरकार वह सुबह 9:40 पर पहुँचे और जैसे ही मैंने अपनी बालकनी से उनकी गाड़ी देखी मैं नीचे की ओर भागी। उन्होंने मेरी तरफ़ एक नज़र डाली और कहा, अरे वाह, मैं उनसे ज़्यादा योगिनी लग रही हूँ। उन्होंने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। हम ऊपर आए और मैं उन्हें कमरे में ले गई जहाँ मेरी दीक्षा होनी थी। मैंने एक नारंगी गलीचा बिछाया था और बाबा जी की तस्वीर के सामने एक ट्रे में 5 फल रखे थे। यह गुरुजी द्वारा क्रिया योग की दीक्षा देते समय अनुष्ठान का हिस्सा होता है। शिष्य शरीर के 5 तत्वों यानी वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और अंतरिक्ष के प्रतीक के रूप में गुरु के सामने 5 फल रखता है। इस तरह वह स्वयं को पूर्ण रूप से गुरु को समर्पित कर देता है। बदले में गुरु ज्ञान उदय होने तक उसका ख्याल रखता है, वो चाहे इस जन्म में हो या किसी और जन्म में। गुरुजी ने बाबा जी की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और फिर गलीचे पर बैठ गए। मैं भी उनकी बगल में बैठ गई। मैं तो बस उस पल का इंतज़ार कर रही थी जब वह मेरी तीसरी आँख पर स्पर्श करेंगे और मैं समाधि में पहुँच जाऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे एक विशेष क्रिया जिसमें श्वास कैसे लेते हैं सिखाई और अपने सामने उसका अभ्यास कराया। फिर उन्होंने मुझे ऐसा हर रोज़ हर हाल में करने का निर्देश दिया और दीक्षा समाप्त हो गई। मैं किसी समाधि या ट्रांस में नहीं गई। हम कमरे से बाहर आए और मैंने गुरुजी को उनकी पसंदीदा खीर परोसी। फिर उन्होंने मुझे नाश्ते के लिए रेनू के घर आने को कहा। जब हम उसके घर पहुँचे तो रेनू मुझे इतना सामान्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। दीक्षा ख़त्म हो गई, उसने पूछा। मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हें बताऊंगी। गुरुजी के जाने के बाद मैंने रेनू से इस बारे में खूब चर्चा की कि यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसी मैंने कल्पना की थी। केवल एक चीज़ जो अलग हुई वह थी मेरी परमानंद की स्थिति समाप्त हो गई। आज पूरे 2 सप्ताह के बाद मुझे भूख लगी। जश्न मनाने के लिए निवेद मुझे मेरे पसंदीदा रेस्टोरेंट ले गए। जीवन फिर से सामान्य हो गया। उस समय मुझे नहीं पता था कि जिस दीक्षा की तस्वीर मैंने मन में बनाई थी उसका संचरण वास्तव में 1 साल बाद होगा और जिसके बाद मैं कभी भी पहले जैसी नहीं रहूंगी। अध्याय 5। गुरुजी ज्ञान स्वामी। गुरुजी, जिन्हें मैं प्यार से पोस्टमैन कहती थी, मानो ऐसे थे जैसे मानव शरीर में देवता हूँ। वह इतने सरल थे कि वह भीड़ में आसानी से गुम हो सकते थे। उन्हें देखने के लिए ज्ञान रूपी आँखें होनी ज़रूरी थी जो नहीं दिखने या नहीं सुनने वाले को पहचान सके। यह डाकिया एक कामकाजी स्वामी और गृहस्थ थे और हर छोटे से छोटा काम भी स्वयं ही करते थे। जब मैं उन्हें सब्जियां खरीदते, बिल चुकाते या सार्वजनिक स्थान पर टहलते देखती तो मुझे उन सभी लोगों पर आश्चर्य होता जो उन्हें देखकर भी नहीं देख पाते थे। लेकिन ऐसा तो हमेशा से ही होता आया है कि जीवित गुरु को पहचान नहीं पाते और वास्तव में ऐसे मसीहा को या तो जहर दे देते हैं या हत्या कर देते हैं या फांसी पर लटका देते हैं। कृष्ण, क्राइस्ट, साईं बाबा, कबीर, बुद्ध को देखो, ऐसी सूची बहुत लंबी है। जब तक यह मसीहा जीवित रहते हैं तब तक उनके साथ चलने वाले लोगों की तुलना में उनके खिलाफ लोग अधिक होते थे, परंतु उनकी मृत्यु के सदियों बाद दुनिया के प्रमुख धर्म उनके गिर्द ही स्थापित हुए हैं। मैं केवल अपने बारे में ही कह सकती हूँ और मैं ये जरूर कहूँगी कि मैं बहुत ही भाग्यशाली रही हूँ कि मैं एक जीवित गुरु के संपर्क में आई और इस अनुभूति से मैंने बेहद लाभ उठाया। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जो जीवित गुरु के संपर्क में इसलिए आते हैं कि उन्हें भी अपने लाभ और मोक्ष के लिए इस सच्चाई की अनुभूति हो। गुरुजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उनसे प्यार करते थे या नफरत, उनका सम्मान करते थे या तिरस्कार। भला बताओ कि सूरज को क्या फर्क पड़ेगा यदि संसारिक प्राणी उससे दूर रहें और घरों के अंदर छिपने का निर्णय लें। सूरज को हमारी ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें सूरज की ज़रूरत है। इसी प्रकार गुरुओं को हमारी आवश्यकता नहीं होती, वे तो जागृत और पूर्ण होते हैं। हम ही अज्ञानी हैं जो सोए पड़े हैं और जिन्हें जीवन रूपी सपने से जगने के लिए उनके मार्गदर्शन और उपस्थिति की आवश्यकता है। जी का जन्म 11 अप्रैल 1947 को भारत के एक बहुत प्रसिद्ध पूर्व शासक परिवार के राजवंश में हुआ था। मात्र 2 वर्ष की आयु से ही गुरुजी स्वयं को समाज की सामान्य भीड़ से दूर रखते थे। वह कुछ पेड़ों के नीचे घंटों बैठे रहते। 2.5 साल की उम्र में उन्होंने अपने दादा को उनके लिए एक खरौन, जो आमतौर पर भिक्षुओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ी की चप्पल बनाने के लिए मजबूर किया। कभी कभी वह 18वीं सदी के महान संत लक्ष्यराम बाबा की समाधि पर चले जाते, जिन्हें आज भी कई साधक माही नदी तट पर टहलते हुए देखते हैं। जब भी गुरुजी बहुत देर तक कहीं नहीं दिखाई देते थे तो उनके दादाजी उन्हें घर से दूर स्थित बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए पाते थे। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने गांव के ब्रह्म स्थान में एक नीम के पेड़ की शाखाओं पर साधना स्थली बनाई। कोई भी उन्हें वहां ढूंढ नहीं सकता था और वह कई घंटों वहीं ध्यान करते थे। अनेक साधु संत उनसे मिलने आया करते थे। कुछ तो उनके हाथों से ही दीक्षा लेना चाहते थे। क्योंकि वह 4 भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए पिता और माँ ने उनके लिए हर चीज़ की व्यवस्था की हुई थी। वह बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। उन दिनों वह आधी रात को गांधी घाट पर जाकर ध्यान करते थे। जब वे अपनी साधना में लीन होते तो कई बार उनके पास शव तैरते हुए आते थे। उन्होंने हमें बताया, मैं उन आत्माओं के सूक्ष्म शरीर को देख सकता था और उनसे बातें करता था। वह अनुभव के लिए अद्भुत थे। कॉलेज में पढ़ने के दौरान वह बहुत उन्नत साधना करते थे, जो उन्होंने किसी गुरु से नहीं बल्कि स्वयं विभिन्न लेखकों की विभिन्न पुस्तकों के द्वारा सीखी थी। 1966 में वह गंभीर हृदय रोग से ग्रस्त हुए और डॉक्टरों ने बताया कि वह केवल कुछ महीनों के ही मेहमान हैं। इस घटना ने उनके जीवन का रुख ही बदल दिया। बाबा जी की कृपा से कुछ विशेष योगिक निपुणता सीखने के बाद वह ठीक हो गए। महावतार बाबा जी से मिलने की उनकी कहानी उन्हीं के जवानी। जब मैं बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष में था, तो मैं हृदय रोग से पीड़ित हो गया। मेरे हृदय के 3 वाल्व खराब थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और केवल 3 महीने तक का समय दिया। 1960 के दशक में भारत में कोई वाल्व प्रत्यारोपण सर्जरी की शुरुआत नहीं हुई थी। जिस डॉक्टर से परामर्श लिया गया, वह बिहार राज्य के श्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक थे। यह जानकर कि उनका बेटा 3 महीने में मर जाएगा, मेरे माता पिता बहुत दुखी थे। भारत में एक पिता के लिए अपने जीते जी बेटे की अर्थी को कंधा देना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने माता पिता और अन्य परिवार गणों के सामने मरने की बजाय घर से दूर चला जाऊं, ताकि उनकी यह उम्मीद तो बरकरार रहे कि शायद उनका बेटा एक दिन जीवित वापस आएगा। इसलिए बिना किसी को बताए मैंने अपना घर छोड़ दिया। मैं जिस गांव में रहता था वह भारत और नेपाल की सीमा के पास हैं। मैंने सीमा पार करके नेपाल में प्रवेश किया और तिब्बत की ओर गहरे जंगल की तरफ चल पड़ा। काफ़ी देर तक ऐसे ही चलते चलते मैं बहुत थक गया और शाम होते होते एक पेड़ के नीचे लगभग बेहोश सा होकर गिर गया। मुझ में आगे चलने या खड़े होने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैंने लगभग यह मान लिया था कि यही मेरे जीवन का अंत है। अब यहाँ कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। मैं या तो भूख से मर जाऊँगा या रात को कोई जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी अंतिम सांसें गिनने लगा, लेकिन तभी एक आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। यह एक उस युवक की आवाज़ थी। वह साधु प्रतीत हो रहा था। उन्होंने मुझसे हिंदी में कहा, तुम कोई मरने वाले नहीं हो, तुम बहुत भाषण दोगे और हजारों लोगों को योग सिखाओगे। मुझे घने जंगल में किसी को हिंदी में बोलते सुनकर आश्चर्य हुआ। मैं जिस क्षेत्र में था वह तिब्बत के पास था, इसलिए वहाँ के लोग या तो नेपाली भाषा जानते थे या तिब्बती भाषा, लेकिन यह युवा भिक्षु बहुत ही अच्छी हिंदी बोल रहे थे। मैं उस समय बोलने या उनकी बातों पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मैंने अपनी टूटी फूटी भाषा में उनसे कहा कि मैं तो बोल नहीं सकता, बचपन से ही ठीक से बोल भी नहीं पाता। मुझे अपना नाम तक किसी को बताने के लिए पेन और कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने मुझे अपने पीछे आने को कहा। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वह मुझे पास की एक गुफा में ले गए और फिर उन्होंने पत्थर का एक बर्तन लिया। पास के झरने से उसमें थोड़ा पानी भरा और लकड़ी के चम्मच से उसे हिलाना शुरू कर दिया। मटके का पानी गाढ़ा सफ़ेद रंग का हो गया। उन्होंने मुझे पकड़ाया और पीने के लिए कहा। मैंने जैसे ही वह पिया, मुझे सुकून सा मिला, सारी थकान भी गायब हो गई। उन्होंने मुझे गुफा में रहने के लिए कहा। मैं वहाँ 3-4 दिन रहा। हर रोज़ वह मुझे वही गाढ़ा सफ़ेद पानी देते थे और मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा। कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे वापस जाने के लिए कहा। मैं वहाँ से छोड़कर घर वापस आ गया। घर में हर कोई मुझे जीवित और स्वस्थ देखकर खुश था। मेरा हृदय रोग पूरी तरह समाप्त हो गया था। डॉक्टरों के लिए मेरा केस हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि यह तो चमत्कार है। मैं कॉलेज वापस चला गया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। इस समय मुझे उस युवा साधु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने सोचा कि वह कोई ग्रामीण होगा जिसे कुछ जड़ी बूटियों की जानकारी होगी। मैंने भगवान को उन्हें भेजकर मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया।